Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Shuddhatmane Namah. Namo Arihantaram. Namo Siddhanam, Namo Ayariyanam, Namo Vajjayanam, Namo Loe Sovasavam. आज से हम यहाँ प्रयोजनभूत सात तत्वों की बात करेंगे. क्यों करना है और ये प्रयोजन भूत तत्व क्या है उसको देखेंगे. अभी अभी आपने सुना ना, मिथ्यात्व दो प्रकार के हैं. एक गृहित मिथ्यात्व जो नया धारण किया है इन एडिशन टू अपना जो अनादि का जो है जिसको कहते हैं अगृहित मिथ्यात्व. उसका स्वरूप भी आपने सुना कि जिसको किसी ने हमें सिखाया नहीं है. जीव जिस गति में जाता है, जो शरीर धारण करता है, मैं उस रूप हूं, ये उसकी मान्यता सहज रूप से हो जाती है. जैसे हम आप सब, मैं मनुष्य हूं, ये बालक को भी नहीं सिखाना पड़ता है. शरीर रूप मैं हूं, ये उसकी मान्यता है. ऐसे पशु पक्षी चींटी आदि भी शरीर रूप मैं हूं, ऐसी उनकी मान्यता चलती है और उनकी सारी जो बिहेवियर है, आचरण है, वो अकॉर्डिंगली चलती रहती है. तो ये यदि हमें अगृहित मिथ्यात्व है वो कैसा पता चलेगा. तो कहते हैं जिनेन्द्र भगवान ने जो उपदेश दिया है उसमें से हमने तो छह द्रव्य देखे, उनका स्वरूप देखा, सात तत्व जो है, क्योंकि हमें तत्वों का विचार करना है तो ऐसे कुछ तत्व ने भी क्या उसको देखेंगे हम. तो उन तत्वों के बारे में हम सुनेंगे, उसका स्वरूप समझेंगे और बारंबार उस पर विचार करेंगे. क्यों? क्योंकि ये ऐसे है या नहीं है, हम अपने बुद्धि से विचार करेंगे और डिसीजन तक पहुंचेंगे तो ही हमें सम्यक दर्शन होगा. अनादि का है कौन सा अगृहित मिथ्यात्व है, उसको टालने का उपाय क्या है, क्योंकि वो तो किसी ने सिखाया नहीं था. गृहित मिथ्या तो जो नया धारण किया था. फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं ना, शरीर मैं हूं ये मान्यता अनादि की है और ऊपर उसने तो औरों से भी सुन लिया. क्या सुना? कि शरीर के लिए ये करो. शरीर के लिए ऐसा नहीं, मैं शरीर हूं और ये मेरे लिए कार्यकारी है. तो किसी ने बोला नमोकार मंत्र जपना चाहिए. क्यों भाई? क्योंकि उससे नमोकार न कहते ना तो उसको ये फेफड़े की बीमारी, ऐसे फेफड़े की वो भी दूर होती है, या ऐसा मंत्र करो तो आपका किडनी का रोग दूर हो जाएगा, ये भक्तामर का ये पाठ करो तो आपको अमुक संकट दूर हो जाएगा, पारसनाथ का जाप करो तो आपका ये संकट विमोचन हो जाएगा. ये उसके अनादि की तो मान्यता थी और अब भी तुम शरीर हो और तुम्हें ये करना चाहिए. योगा भी क्यों करते हैं हम? मन शांत रहता है, शरीर की बीमारी दूर हो जाती है, ब्लड प्रेशर ठीक हो, शरीर की बीमारी ठीक हो जाती है. तो मन भी, वचन भी और काया भी तीनों पुद्गल है, जड़ है, मैं उनसे भिन्न हूं. ये हमारी सारी कोशिश किस लिए है? शरीर मैं हूं और मुझे ठीक होना है. डॉक्टर के पास क्यों जाते हैं हम? मुझे ठीक रहना है ना डॉक्टर? हाँ, हमारे पास क्यों आते हैं पेशेंट? कि मुझे ठीक रहना है, इसके लिए मैं क्या कैसे बिहेव करूं. फिर डॉक्टर ही भगवान है, वो जो कुछ कहेगा वैसे हम कहते हैं. इज इट इट? वंदना बहन क्या कहते हैं? हाँ, ऐसा ही है ना. हाँ, क्योंकि वो जैसा कहेगा, ये खाओ ये मत खाओ ये आपके लिए अनिष्ट है, किसने बताया? डॉक्टर ने. फिर बिल्कुल हम सही का सही वैसा ही बिहेव करेंगे, क्योंकि हमने अपने को शरीर माना है. और जिसको हम मैं मानते हैं, अकेले शरीर नहीं माना. यदि हम कहते हैं मैं भिन्न हूं, शरीर भिन्न, शरीर के लिए अच्छा है तो करो, तो ठीक है, तो अभिप्राय में भूल नहीं है. फिर भी वो जीव कसरत करेगा, डाइटिंग करेगा, सब कुछ करेगा। अब कैसे मानकर कह रहा है? शरीर मानकर नहीं, यह मैं हूं मानकर कर रहा है। दोनों में डिफरेंस है ना? यही मैं हूं ऐसा वो मानता है और फिर उसके लिए सारे आचरण चलते। ये और भी नया नया मिथ्या तो आप तो बताने वाले हो। ये नया जो मिथ्या तो के फैशन चलते हैं हमारे इंडिया में बहुत सारे। कैसे? वो वास्तुशास्त्र नहीं सुना था? आपका आता है वो वास्तुशास्त्र में घर देखता है और वहां तो क्या, ये ऐसे फैशन और ऐसे फैड तो धनवानों के चलते हैं। तो आपके पास धन है और आपका कहीं ना कहीं हरेक को कोई ना कोई मुश्किल कहीं ना कहीं चलती है। किसी को धंधे में, किसी को हेल्थ में, किसी के बच्चों को कोई बीमारी होगी या नहीं हो इसलिए भी ट्राई करता होगा। तो कहेगा ये पानी की टांकी ना इधर से उधर हटाओ, ये रूप ऐसा तिरछा क्यों किया उसको ऐसा सीधा कर दो, ये अमुक ये यहां से तोड़कर वो वहां बनाओ। क्यों? क्योंकि तुम्हें पैसा मिलेगा, शांति मिलेगी। एक तो तुम्हारा गला इस ओर है ना, तुम कैश बॉक्स तो ऐसा बैठो और कहते भी देखो उसने बताया मैंने किया अभी मेरा अच्छा पैसा आने लगा। तो पैसा आने लगा तो जीव को क्या मिला? ये कैसी कोशिश है संयोगों को ठीक रखने की और शरीर को ठीक, परंतु तू उससे भिन्न है। ये संयोग सुधरे या नहीं सुधरे तुझे क्या, उससे सुधरते वो बात नहीं है। इसने मान ली, कल्पना कर ली। और क्यों को संयोग सुधारना चाहता है? क्योंकि संयोगों से मैं सुखी हूं ये इसकी मान्यता मिथ्या है, वो चलती रहती। संयोगों के कारण मैं दुखी हूं और संयोग सुधरेंगे तो मैं सुखी हो जाऊंगा। हम बचपन में बच्चे थे तो क्या समझते, अरे बड़े लोग बहुत सुखी है, हम कब बड़े हो जाएंगे? सबके अनुभव की बात है ना, तो बड़ों के दुख तो बड़े होने पर समझते हैं। हम पहले गरीब थे तो लगा, हमें लगा क्या पैसा मिल जाएगा तो सुख शायद बढ़ जाएगा अपना, वी कैन डू एनीथिंग व्हाट वी वांट, वी कैन बाय एनीथिंग। फिर पैसा मिलने लगा तो पैसे वालों के दुख तभी पता चलेगा ना, तभी चल जो कोई है टेंशन है ना। देखो टेंशन जो है आकुलता है वो मिलाने के लिए, नॉट ओनली दैट, पैसा ज्यादा है तो कहाँ खर्चा करना है, आज मुझे क्या लाना है, तो हमारी इच्छाएं हमारे सारे विचार वैसे चलते हैं। तो इसका दुख, इसका टेंशन, इसकी आकुलता चलती रहती है और वही तो दुख है। क्यों ये सारा हुआ, मैं कौन हूं ये समझा नहीं उसने। तो इसको समझने के लिए भगवान ने सात तत्वों का स्वरूप बताया है और उन तत्वों को कहते हैं प्रयोजन भूत तत्व। प्रयोजन क्या है? प्रयोजन है यानी हमारा एम क्या है, तो सुख प्राप्ति का है। हमें सुखी होना है, हमारे जो कोई बिहेवियर है, जो कोई एक्शंस है, जो कुछ कार्य हम सुबह से शाम तक करते हैं वो सुखी होने के लिए करते हैं। परंतु ये जो बाह्य सुख है, इंद्रिय सुख, वो तो सच्चा सुख है ही नहीं है, क्योंकि उसके पीछे आकुलता है। जैसे हमने खाने में सुख माना, गुलाब जाम अच्छा लगता है कि नहीं वंदना को? कितना, एक के दो के दस के पचास, आपके इनफ इनफ इनफ। एक में सुख है, दो में ज्यादा सुख होना चाहिए था। यदि सुख होता तो एक गुलाब जाम खाने से सुख होता है तो दस खाने से और सुख हो जाता है। आप कहेंगे हाँ हमको होता है, तो फिर पचास खाओ ना। तो वो सुख नहीं हो सकता है कि जिसके पीछे दुख है। तो हमें ये सुख है, देखो इच्छा उत्पन्न होना ही मूल में मूल दुख है। आपने अभी पूछा था ना इच्छा क्या है, वो लोभ है, चारित्र गुण की विभाव पर्याय। इच्छा उत्पन्न होती है वो दुख है और वो दुख को कैसे मिटाना चाहते हैं, हम बाहर से इलाज करना चाहते हैं। दुख है कहाँ? अपने में। और हम किसमें बदलाव लाने की कोशिश करते हैं? बाह्य में, संयोगों में। परंतु इच्छा का उत्पन्न होना ही दुख है। हम इसका इलाज क्या करते हैं? इच्छा को पूरी करने की कोशिश करते हैं। बाय दैट टाइम 10 अन्य इच्छाएं उत्पन्न होती है, क्योंकि इच्छा की पूर्ति होने पर भी इच्छा, देखो अग्नि है ना, उसको बुझाने के लिए हमने घी डाला उसमें, पूर्वी क्या होगा? और बढ़ेगी। अच्छा, इच्छा का ऐसा ही है, इच्छा कहो, आशा कहो, आपने सुना भी होगा, आशा नाम का ऐसा गड्ढा है, बड़ा गड्ढा कि उसको कभी पूरा ही नहीं होता है। ऐसा भी कहते हैं आशा नाम की एक श्रृंखला है, श्रृंखला यानी बेड़ी। कैसी बेड़ी है? उससे जो बंधे हुए ना वो बहुत जोर से दौड़ते हैं, हाँ, और उस बेड़ी से जो खुले हैं वो एक जगह बैठते हैं। आपने नहीं सुना? हमने स्कूल में ही सुना था, आशा नाम मनुष्यानाम काचित आश्चर्य श्रृंखला, आश्चर्यकारी श्रृंखला है। यया बद्धा प्रधावंती, इससे बंधे हुए बहुत जोर से दौड़ते हैं, इच्छा वाले बहुत जोर से दौड़ते हैं। और मुक्ता स्तिष्ठन्ति पंगुवत, इस बेड़ी से जो मुक्त है वो पंगुए ने पैरालाइज के जैसे एक जगह लूले के जैसे बैठे रहते एक जगह, यानी इसमें जिसको कहते हैं उपहासात्मक व्यंगात्मक बताया है। हम विचार करेंगे, आशा है नहीं इच्छा है, कुछ न कुछ लोभ, उसके पीछे लोग दौड़ते हैं, तो इनमें से छूटने का उपाय क्या है? इच्छा ही उत्पन्न न हो। हम भगवान को कितना सुख है समझते हैं, भगवान के पास कितना सुख है? अनंत सुख है, अव्याबाध। उनको कितनी इच्छाएं हैं? पूर्ण वीतरागी है, तो पूर्ण वीतरागी होने पर ही अनंत सुखी हो सकते हैं। तो अनंत सुख मोक्ष में है। मोक्ष क्या है? अपनी अवस्था है। मोक्ष किसी प्लेस का नाम नहीं है, मोक्ष हमारी अवस्था है, पूर्ण शुद्ध अवस्था। जीव, हम जीव द्रव्य है, हमारी प्योर जो फॉर्म है, हमारी अवस्था है, तो वो प्योर जो अवस्था है, पूर्ण शुद्ध अवस्था, उसको हम मोक्ष कहेंगे। वो कैसे प्राप्त होगी? मोक्ष मार्ग से। मोक्ष मार्ग क्या है? उसका नाम है तत्वों की भाषा में संवर और निर्जरा। वो क्या है हम देखने जा रहे हैं, सात तत्वों का अभी अभ्यास करेंगे हम। तो संवर और निर्जरा मोक्ष मार्ग कैसा प्रकट होगा? तो बंध का अभाव और आश्रव का अभाव। आश्रव यानी कर्मों का आना या अशुद्धि जो है, अशुद्धि को रोक लगाएंगे या कर्म का आना रुक जाएगा तो हम कहेंगे संवर हुआ, उसको कहेंगे आश्रव। आश्रव और बंध, जो बंधे हुए कर्म है वो अधिक मात्रा में निकल जाएंगे तो उसको कहेंगे निर्जरा। तो मोक्ष का उपाय संवर निर्जरा। संवर निर्जरा कैसे प्रकट होगी? आश्रव और बंध का नाश करने से उत्पन्न होगी। तो ये जो पांच तत्व जानना है, तो ये जानेंगे कैसे प्रकट होगा, क्या होगा, तो उसके लिए जीव और अजीव तत्व, मुझे सुखी होना है तो मैं कौन हूं, ये जानना जरूरी है। तो जीव तत्व को जानना है, मैं कौन नहीं हूं इसको जानने के लिए अजीव तत्व जानना है, इसलिए उसको भी जानना है। तो ये जो सात तत्व है उसको हम दोबारा देखेंगे विस्तार से। इन सात तत्वों को जाने बिना हमें आत्मानुभूति नहीं होगी, यानी इसके जाने बिना हमारा दुख दूर नहीं होगा, वीतरागता की स्टार्टिंग यानी धर्म की शुरुआत नहीं होगी। तो जिन तत्वों को जाने बिना हमारा दुख दूर नहीं होगा और हमें सुख की प्राप्ति नहीं होगी, ऐसे जो सात तत्व है, मिनिमम पॉसिबल सात ही है, इसको हमें जानना जरूरी है। इसलिए इसको कहते हैं प्रयोजन भूत तत्व। प्रयोजन का अर्थ होता है हेतु, हम क्या चाहते हैं, हमारा क्या एम है, क्या गोल है, तो वो उसको कहेंगे प्रयोजन भूत। तो ऐसे जो कोई तत्व है जिनको जानना जरूरी है उसको कहते हैं प्रयोजन भूत तत्व। अभी ये दोनों विषय साथ साथ चलेंगे, आप मिथ्यात्व के बारे में बताएंगे और हम तो तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शन। मिथ्यात्व को केवल जानने से कुछ नहीं चलेगा, क्योंकि किसी को वर्णन किया आपका इस जेल में बंद है, किस तरह से बंधे हो, इतनी श्रृंखलाओं से बंधे हो, और फिर पूरा वर्णन किया बंध का, तो बंध का वर्णन सुनने से वो छूट जाएगा कि नहीं जाएगा? तो बंध का वर्णन सुनना जरूरी है, क्योंकि हम बंधे हुए पता ही नहीं है, तो इतना वर्णन सुनकर भी फायदा नहीं, उसमें से छूटने का उपाय भी जानना चाहिए। तो छूटने का उपाय भी जान लिया तो ठीक है ना वंदना, हमने जान लिया हाउ टू गेट फ्री, हाउ टू गेट रीड ऑफ इट। उतना जानने से काम नहीं चलेगा, उसमें से छूटने का उपाय करेगा स्वयं। पहले बंधा हुआ है, पहले बंधा हुआ है वो जानना चाहिए, बंधन से कैसे छुटकारा हो सकता है उसको जानना चाहिए। तो केवल जानने से नहीं चलेगा, उस रूप वो बिहेव करेगा, उस रूप वो छूटने का उपाय करेगा तो ही छूटेगा। तो ये सब हम जानेंगे इसमें से। और छूटने का उपाय क्या है, बाहर में तो कुछ बेड़ी में बंद है, साकल में बंद है, उसमें से कुछ उसको और ज्यादा उपाय करने पड़ेंगे। यहां कुछ नहीं करना है, बस अपना स्वरूप सही रीति से जैसे जिनेन्द्र भगवान ने कहा है वैसे उसको बस जानना है और एक्सेप्ट करना है, इतना ही करना है। और जीव को कुछ नहीं करना है, सबसे सहज सरल और इजीएस्ट यही हम इतना ही कर सकते हैं और कुछ कर ही नहीं सकते। फिर भी बाहर की चीजें करते हैं ऐसा हम मानते भी है और उसी के पीछे लगते भी है। तो हम यहां अभी प्रयोजनभूत सत तत्व जो है उसका भी हम यहाँ अभ्यास करेंगे। ये जैन तत्व परिचय बात है ना, ये पुस्तक उसके आधार से हम देखेंगे यहाँ 97 पृष्ठ हिंदी का हम शुरू करते हैं। वस्तु व्यवस्था, वस्तु का अर्थ होता है द्रव्य। इस विश्व में 6 द्रव्य है, वो गुणों का समूह है प्रत्येक द्रव्य, और उसमें अपना प्रणमन यानी अपनी पर्याय अपनी अवस्था हर समय स्वयं करे ऐसी उसमें निज शक्ति है। प्रत्येक द्रव्य शक्तियों से भरपूर है, उसका परिणमन होने के लिए उसको अन्य किसी की भी सहाय की जरूरी नहीं है। हम भी जीव है, अनंत जीव सिद्ध बन चुके हैं, तो सिद्ध भी अवस्था है। वो जीव अपने में से ही सिद्ध अवस्था प्रकट करने की संपूर्ण शक्ति उसमें है, भरी पड़ी है, वो कहीं बाहर से आने वाली नहीं है। तो हम स्वयं परमात्मा स्वरूप है की बात कर रहे हैं, और पर्याय में पर्याय की बात, अभी परमात्मा बन सकते हैं। उसके लिए कहते वस्तु व्यवस्था क्या है, 6 द्रव्य कैसे है, कैसे परिणमन कर सकते हैं, ये इसकी सारी जो इसको कहेंगे वस्तु व्यवस्था। वस्तु व्यवस्था अर्थात तत्वों का सत्य स्वरूप न जानने से। वस्तु व्यवस्था हम जाने या न जाने वो जैसी है वैसी ही है। जैसे कोई बात है उसके बारे में हम अज्ञानी हैं, ये सूरज पूर्व से उग रहा है, ऊपर आएगा और फिर अस्ताचल को चला जाएगा पश्चिम की ओर, हमने नहीं जाना तो उसके कुछ वेरिएशन होगा
नहीं
होगा। ऐसे ही यहां जो तत्वों का स्वरूप हमने नहीं जाना है, परंतु तत्व तो जैसे है वैसे ही चलेंगे। जीव पुद्गल धर्म अधर्म जो द्रव्य है उनका जो परिणमन है वो वैसा ही चलेगा। हमने उसको कुछ गलत मान लिया है, जैसे अभी माना था ना ये घर तोड़ोगे तो हम सुखी हो जाएंगे, हमने कल्पना में किसी देव की कल्पना कर दी, उसको कोई चित्र बना दिया ये हमको सुखी करेगा, या कोई पत्थर रख दिया और उसके ऊपर सिंदूर डाल दिया ये हमको सुखी कर देगा, ये हमें कल्पना कर दी उसलिए थोड़ा ही वो हो जाएगा। तो हमें तत्व जैसे है वैसे सही स्वरूप न जानने के कारण जीव परपदार्थों को, परपदार्थ यानी बाह्य जो कोई बाकी चीजें है, पर यानी अन्य पदार्थों को अथवा संयोगों को, संयोग यानी अपने जो कोई अभी जो घर है, पैसे है, बच्चे है, मटेरियल जो कुछ मटेरियलिस्टिक लाइफ जो है, इष्ट अथवा अनिष्ट मानता है। इष्ट यानी अपने लिए अच्छे है, लाभदायक है, और अनिष्ट यानी अपने लिए वो कष्टकारक है, ऐसे मानता है। जब मान लिया तो नेचुरली क्या प्रयत्न करेगा, इष्ट को रखना चाहेगा या मिलाना चाहेगा, और अनिष्ट को दूर करना चाहता है। जो पदार्थ इष्ट भासित होते हैं ये है नहीं है। इस विश्व में 6 द्रव्य है, जीव पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल। तो हम तो धर्म अधर्म आकाश काल से कुछ इतना लेना देना नहीं हमारा, हमारे इंद्रियों के द्वारा तो पुद्गल जानने में आते हैं, और उन पुद्गलों के जो कुछ मिश्र अवस्था में अन्य जीव भी है, तो इस विश्व में कितने जीव द्रव्य अच्छे हैं, कितने पुद्गल द्रव्य अच्छे हैं और कितने बुरे हैं। रंजन बेन, पुद्गल द्रव्य तो पुद्गल द्रव्य है, उसमें अच्छा नहीं होता ना बुरा होता है, हमने मान लिया उसको, है ना। शरीर गोरा अच्छा का काला अच्छा हमने कल्पना की है ना उसमें, तो उसका वो शेप भी ऐसा ही चाहिए, वो कलर भी ऐसा ही चाहिए, ये हाइट इतनी चाहिए, तो हमने उसमें अच्छा और बुरे की कल्पना की। ये लाल रंग, ये वाली शेड नहीं अच्छी थी, दूसरी अच्छी थी, तो ये अच्छा बुरा चलता रहता है, कुछ लेना देना नहीं है। किसी दूसरे ने कुछ साड़ी पहनी है, अरे थोड़ी अलग कलर की होती तो बहुत अच्छी होती है ना। तो ये सफेद साड़ी है, नहीं पर ये थोड़ी सी इसका और जरा व्हाइटनेस और चाहिए था। तो इस तरह से हम उसमें अच्छे और बुरे की कल्पना करते, वो है नहीं है। तो जो पदार्थ इष्ट भासित होते हैं उनके प्रति अनुराग उत्पन्न, अनुराग यानी उसके प्रति लगाव, प्रीति, कोई अफेक्शन को, एफिनिटी को, जो कुछ अनुराग, जिसको हम राग कहेंगे, अनुराग उत्पन्न होने से उन पदार्थों को प्राप्त करने की चेष्टा करता है, प्रयत्न करता है, इच्छा करता है। और जो अनिष्ट भासित हो गए तो क्या होगा, कल्पना में भासित हो रही है, उसको दूर करने की वो चेष्टा करेगा, प्रयत्न करेगा, और उनके प्रति उसको द्वेष उत्पन्न होता है। तो राग और द्वेष क्यों उत्पन्न हुए, कल्पना के कारण, इष्टपने की कल्पना और अनिष्टपने की कल्पना। ये कल्पना है, वस्तु में नहीं है, ये उसकी मस्तिष्क में है, इसी को मिथ्यात्व कहेंगे, विपरीत मान्यता, विपरीत अभिप्राय। इससे ज्ञात होता है, इससे मालूम पड़ता है, पर पदार्थ या संयोग राग द्वेष के कारण नहीं है। यानी पर पदार्थ के कारण मुझे राग या द्वेष नहीं उत्पन्न होता, ये सामने घड़ी है, इसको देखकर राग उत्पन्न होना, चोरी करने का भाव हुआ, ये घड़ी के कारण चोरी करने का भाव हुआ कि नहीं हुआ। जो चोर चोरी करता है तो सामने कोई हीरा है पड़ा, तो हीरा देखकर उसको चोरी का भाव उत्पन्न हुआ कि नहीं हुआ, उसके कारण नहीं हुआ, उसको अंदर लोभ पैदा हुआ, ये उसकी अपनी, क्यों पैदा हुआ, उसको उसने अच्छा माना, ये उसके मूल है। जड़ की बात की ना अभी, ये मिथ्यात्व जड़ है किसका, ये क्रोध मान माया लोभ सबका, सारे जो कर्मबंध आदि जो सब है, ये मिथ्यात्व ही उसकी जड़ है, उसके रूट्स है। तो कहते हैं ये संयोग राग द्वेष के कारण नहीं है, परंतु मिथ्यात्व, यह मिथ्यात्व को कहे तत्व के बदले अतत्व श्रद्धान, श्रद्धा ने उसकी मान्यता, उसका बिलीफ, तत्व का बिलीफ उसके उल्टा, यानी अतत्व श्रद्धान। मिथ्यात्व को क्या कहा पूर्वी, अतत्व श्रद्धान, श्रद्धा ने बिलीफ, तत्व यानी जो जैसा है वैसा उसको
नहीं समझना,
अ कहा ना अतत्व, तत् और त्व, तत् यानी वह और त्व यानी उसका पना, जैसे कोई वृद्ध है और हम क्या कहेंगे उसका वृद्धत्व। अब माता है, ये पूर्वी माता है और उसका मातृत्व, त्व बता लगाया ना उसमें, हम उसका पना जो है, नेस आप लगाते हैं अंग्रेजी में क्या लिखते हैं, कोई काइंड है, कोई व्यक्ति काइंड है और उसका वो काइंडनेस, हाँ गुण का बताया, वैसे ही तत् यानी वस्तु, जो कोई वस्तु जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, और उसका त्व, उसका जो कुछ पना, उसका जो स्वरूप, उसको कहेंगे तत्व। और जो वस्तु जैसी है उसको वैसी नहीं समझना, अपने मत से कुछ, अपनी मान्यता से अलग ही मान लेना, मान्यता में है, कहने में नहीं आता, ये दोष मान्यता का है, कथन का नहीं। क्योंकि जो हम जो भाषा बोलते हैं ना, तो व्यवहार में लौकिक में हम तो कहने के लिए ऐसा ही कहेंगे, परंतु उसके पीछे मान्यता क्या है ये हमको टटोलना है। शास्त्र में भी जहां उपदेश है वहां मान्यता आपकी सही है कि नहीं इसको हम देखते हैं। हम देखेंगे ये जब हम तत्वों का स्वरूप समझेंगे तो इस बात कर फिर हम बताएंगे तो आपको और ज्यादा उसकी बात समझ में आ जाएगी। तो परवस्तु या संयोग जो है वो आपको राग द्वेष नहीं कराते। तो राग द्वेष क्यों उत्पन्न हो रहे हैं? उल्टी मान्यता के कारण। इसको कहेंगे विपरीत अभिप्राय। शब्द वही है, उसका अर्थ वही है। क्या? उल्टी मान्यता या विपरीत अभिप्राय या मिथ्यात्व, तीनों का अर्थ एक ही है। जो जैसा नहीं है उसको वैसा मानना की बात चल रही। और ये कषाय का कारण है। तत्वों के संबंध में, अभी तत्व कौन से हम देखेंगे, तो उसके संबंध में, उसके बारे में विपरीत श्रद्धा। विपरीत का अर्थ क्या है? उल्टा, जैसा नहीं है वैसा। विपरीत ज्ञान, यानी एक तो मान्यता, एक है वैसा जानना, उल्टा जानना। पहले क्या कहा? उल्टा मानना, उल्टा जानना, एवं तदनुसार होने वाला विपरीत आचरण, यानी बिहेवियर, अकॉर्डिंगली उल्टा ही बिहेवियर। ये तीनों को क्या कहेंगे हम? मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्याचार। अपनी भाषा में क्या है? उल्टी मान्यता, उल्टा ज्ञान और विपरीत आचरण। और हम शास्त्र की भाषा में उसी को कहना है तो क्या कहेंगे? मिथ्यात्व कहेंगे। मिथ्यात्व तीनों में लगेगा। किसमें? मिथ्या दर्शन यानी मिथ्या श्रद्धा, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र। चारित्र यानी आचरण। अपने आत्मा में एकाग्र होना, कॉन्सेंट्रेट करना, वो है सम्यक चारित्र। और अपने आत्मा में आचरण नहीं करता है तो क्या होता है? राग द्वेष की उत्पत्ति होती है। जिसको आत्मा का अनुभव नहीं है उसके तो मिथ्या चारित्र है। तो हम इसकी बात करेंगे अभी आगे। तो ये कब से है ये मिथ्यात्व? अनादिकाल से। कितने समय वाला है? एक एक समय वाला, हर समय नया नया। मिथ्यात्व 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 मिथ्यात्व, क्योंकि पर्याय एक समय की होती है। तो कब से आ रहा है? अनादि से। तो हम क्या कहेंगे? अनादि का है। परंतु अनादि की एक ही पर्याय नहीं है, हर समय नई पर्याय भी मिथ्यात्व की है। जैसे हम कहीं गए, वहां एक बहुत गुफा थी, बहुत सालों की, सैकड़ों सालों की, उसके अंदर अंधेरा था। तो अंधेरा 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 चला रहा है। कब से? 500 साल हो गए मान लेते हैं। और अभी उजाला हुआ। आपको पूछा था ना, पहले प्रकाश आएगा कि पहले अंधेरा? तो 500 साल का हमने सुना अंधेरा है, तो उसको निकालने के लिए कितने साल लगेंगे? 500 में 500 साल लगेगे कि नहीं? हम ये सारा फावड़ा, वो सब गमेला, वो सब लेके गए वहां अंधेरे को निकालने के लिए, क्योंकि हमको उसको बाहर निकालना था तभी प्रकाश अंदर आने वाला था। यू अंडरस्टैंड? हिंदी समझती है ना? हाँ। तो कितने साल लगेंगे? वी हैव टू रिमूव ऑल अंधेरा एंड देन ब्रिंग लाइटनेस। हाँ, व्हाट विल यू डू? कैसे निकालेंगे? कोई सक्शन पंप लगाएंगे वहां अंधेरा निकालने के लिए? हाँ हाँ पूर्वी, जस्ट हाँ, जस्ट लाइट,
दीवा करो,
दीवा करो। तो दीवा करना ये उत्पाद हुआ ना प्रकाश का, अभी आपने सुना ना। और उसी समय अंधेरा इज नो मोर, जो नो मोर है उसी को व्यय कहते हैं। पहले में था, अब दिया करते ही अंधेरा इज नो मोर, उसको कहेंगे अंधेरे का व्यय हो गया। वैसे पहले मिथ्यात्व था, एक समय पहले मिथ्यात्व था, सम्यक दर्शन होते ही मिथ्यात्व इज नो मोर, तो हम क्या कहेंगे? मिथ्यात्व का व्यय हुआ। दोनों का समय एक, मिथ्यात्व है भी, अभी सम्यक तो हुआ, तो वहां मिथ्यात्व इज नो मोर, तो उसको कहेंगे मिथ्यात्व का व्यय हुआ। ख्याल है ना, ये एक ही समय में हो रहा है। तो यही कहते हैं ये जो अनादि से मिथ्यात्व 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 चला आ रहा है, इसको क्या कहेंगे? किसी ने सिखाया नहीं इसको, तो उसको हम कहेंगे ये निसर्गता है, नेचुरली है, किसी के बिना सिखाए चला रहा है, उसको कहेंगे निसर्ग या अग्रहित मिथ्यात्व। एक नाम और मिला आपको, निसर्ग ज जयने उससे उत्पन्न होने वाला, यह है ही अनादि से। और दूसरा क्या है? कुदेव, कुगुरु और कुशास्त्र, जो सच्चा उपदेश नहीं दे रहे, हमारी मिथ्या मान्यता का और पोषण करते हैं, उसको कहेंगे कुदेव, कुगुरु और कुशास्त्र। कु याने बुरा, जो सुदेव के उल्टा, जो सच्चे देव, सच्चे गुरु, सच्चे शास्त्र है, उससे विपरीत जो कोई है उसको कहेंगे कुदेव, कुगुरु और कुशास्त्र। ये कुदेव कोई बाहरी चीज नहीं है, हमने अपनी कल्पना से खड़े किए। जैसे एक पहले बहुत बड़ा चित्रकार हुआ था, तो लक्ष्मी नाम के देव की देवी की उसने कल्पना की थी, तो उसने किसी मॉडल को वो लाल साड़ी वेड़ी पहना कर वहां खड़ा कर दिया, और उसका कमल चित्र
कमल के ऊपर,
हाँ कमल के ऊपर, तो तब से लोगों को वो अच्छा लगा, तो उसको ही लक्ष्मी देवी मानने लगे। अब ऐसे कोई तो है ही नहीं है कि इस तरह की, इस चेहरे वाले की ऐसी कोई लक्ष्मी देवी, समझ में आया ना? ऐसे ही आपको तो हनुमान को पता है, कैसा है हनुमान? अरे वो तो मुख चले गए, वो तो कामदेव थे, विद्याधर थे, मनुष्य थे, मुनि होकर मोक्ष चले गए। कामदेव का अर्थ होता है बहुत सुंदर रूपवान जो होते हैं, ऐसे कामदेव हो जाते हैं, ऐसे कुछ चतुर्थ काल में इतने सारे कामदेव होते, उसमें से ये वन ऑफ देम था। तो अत्यंत सुंदर रूप वाले थे, और उसको क्या बना दिया लोगों ने? कल्पना से उसको बंदर बना दिया। ये वानर या बंदर तो उनके ध्वजा का चिन्ह था, ये जो उनके जो कोई हरेक राजा रहते हैं उनके अपने अपने कोई ध्वजा होती है, मुद्रिका होती है, उसके ऊपर उसका साइन होती है उसको, जैसे हमारे फ्लैग्स होते हैं अलग अलग, तो हमने वो तिरंगा झंडा इंडिया का, और यहाँ का कोई अलग है ना आपके, उसका विशिष्ट कलर, उसके विशिष्ट जो कोई स्ट्रैप्स है, वो चांदनी है, ये यहाँ का फ्लैग है, वैसे उनके फ्लैग पर वो बंदर का चिन्ह था, तो उन्हीं को बंदर बना दिया। ये कल्पना की उपज है, ऐसा कोई भगवान है ही नहीं है। ये मुख बंदर का है, फिर उसको पूंछ है, और ये ऐसा वैसा, ये सब ये गप है सारी। तो ये इसको कुदेव कहेंगे हम, कल्पना में कोई है, और फिर हम उनके नाम से ऐसे ग्रंथ तैयार किए, फिर उसके उपदेश भी देने लगे, ऐसा करो वैसा करो करके, तो इसको कहेंगे कुदेव, कुगुरु, यानी ये ऐसा उपदेश देने वाले जो कोई मनुष्य है उसको कहेंगे कुगुरु। और उन्होंने अपने कुछ कल्पित लिख दी भी दिए ग्रंथ, कि ये हमारे भगवान ने ये ग्रंथ ऐसा कहा, तो उसको कहेंगे कुशास्त्र। कैसे कुशास्त्र? कहीं कहेंगे हिंसा मत करो, और कहीं कहेंगे उसी शास्त्र में कि वो तो ऐसा यज्ञ करो और उसमें पशुओं को बलि दे दो तो आप सुखी हो जाए। एक बार कहते ब्रह्मचर्य है वो अच्छा धर्म है, और एक जगह उसी ग्रंथों में कहेंगे वो सती अनुसया हो गई, वो स्वर्ग में चली गई, उसके दरवाजे बंद किए। ये स्वर्ग के दरवाजे ऐसे खोलने बंद करने वाला कोई नहीं होता, उनमें ऐसा भी मानते हैं ना, कोई चित्रगुप्त होता है, आप पुण्य का पाप का सब हिसाब लेखा जोखा हिसाब रखने वाला, अब उसको कितने लोगों का हिसाब रखना पड़ेगा कुछ है कि नहीं है। और फिर उसी में ऐसी स्टोरी भी बनाते हैं, उसने वो गलती से वो यमराज आया, ऐसा कोई यमबिंब नहीं रहता हो।
ये मुसलमान ने बोलता क्या, एक चीज का इधर देखा है, एक चीज का इधर देखा है, पुण्य ये लगता है कि पाप लगता है,
ये सब
आदमी का फीस का कितना होना।
ये सब ऐसे झूठी कल्पनाएं, इसी को कहते कुशास्त्र, समझ में आया ना? तो वो कहेंगे वो सत्य अनुसार है, उसको पुत्र नहीं था इसलिए स्वर्ग से वापिस भेज दिया, जाओ अपुत्रस्य गतिर नास्ति, वो नीचे पृथ्वी पर चले जाओ और जब पुत्र होगा तब चले आना। अरे वाह रे वाह, फिर उसमें इतनी ऐसी कुछ गलत कहानियां भी लिख देते हैं कि जिसको पढ़कर हम भी ऐसे लगते हैं ये कैसी ऐसी धर्म के नाम पर क्या क्या ये चलता है। तो इसको कहते हैं कुदेव, कुगुरु और कुशास्त्र। देखो शरीर मैं हूं मान लिया है, अब कोई बीमारी आई है तो ऐसे बताने वाले आजू बाजू में अरे वहां चला जाना, वो ऐसा है कोई मंत्र देगा कोई कहते हैं वो ऐसे आपको ठीक कराएगा तो वहां चले जाते हैं, डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, पहले वो कुदेव की लाइन में चले जाएं। वहां तो कोई बैठा ही होता है कि पैसा हड़पने के लिए, वो कोई बता दिया ये पूजा करो, ये इसको अर्घ चढ़ाओ, इतना दान दे दो, किसको, मुझे नहीं, ये मेरा आदमी कहे उसको दे दो। अभी अभी पूना मेरे भाई के घर में ये बात हुई, कोई ऐसा ये कोई आया था उनके घर में, बताया तुम्हारा ये फोटो है ना हार, उसने पहचान लिया, भाई के लड़के की डेथ हुई बहुत यंग एज में, अभी दो साल पहले एक्सीडेंट में, 25 साल का लड़का एक्सीडेंट में ऑन द स्पॉट चला गया, अभी उसके 2 साल हुए, इसलिए कुछ फोटो का हार भी डाला था उन्होंने, तो उन्होंने देख लिया, तो दूसरे दिन बताया कल रात तुम्हारा लड़का आया था यहाँ, उसकी आत्मा भटक रही है, 2 घंटे मेरे से बातचीत हुई। तो अभी क्या करना है, नहीं उसके लिए तो ये सारा पूजा वगैरह सब करेंगे, दान देना पड़ेगा। भाई ने बताया उसके नाम पर और उसके बिना नाम पर भी मैंने लाखों रुपए दान दिया है, 18-20 लाख रुपए मैंने देवस्थानों में अलग अलग जगह बहुत सारा कर दिया है। नहीं नहीं वो तो हो गया, अभी 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 आपको और करना पड़ेगा, ये 2 लाख रुपए आपको देना पड़ेगा। अच्छा दे दूंगा, अभी कोई मंदिर का काम चल रहा है वहां भी, और मैं उसकी भी स्कीम चल रही उसमें मैं दान दूंगा, वो नहीं चलेगा, वो मेरे आदमी को देना पड़ेगा। नहीं तो आप ऐसा करो, अमुक ये इतनी रकम है मैं बताता हूँ, वहां जाकर वो जमीन में गाड़ देना, और देखो वो गाड़ देना और बिना पीछे देखे वहां से चले जाना, पीछे मुड़कर नहीं जाना, मेरे आदमी के साथ जाना, वो वहां खड्डा कर देगा, वहां पूर देना उसको संपत्ति को, और फिर आप बिना पीछे देखे चले जाना। इतनी यानी कोई बच्चा भी समझेगा ये कितने मनगढ़ंत बात है, ये कैसी कैसी बात है, पैसा लेने के लिए क्या क्या रूप बनाते हैं, क्या क्या करते हैं, ये सारे कुदेव है, कुशास्त्र है, कुदेव नहीं यहाँ तो कुगुरु है, तो ऐसे लोगों से तो दूर ही हटना चाहिए ना, तो भोले लोग उसके पीछे लगते हैं। अरे वो जीव जो मर गया वो तो कहीं ना कहीं जन्म लेके चल गया है, वो तेरे यहाँ भटकने के लिए उस आत्मा को कहाँ फुर्सत है, हम कहीं से मरकर यहाँ आए हैं, तो हमारा 6 महीने का 1 साल का बच्चा भटकने के लिए कहीं जाता होगा पूर्व भो में, ये कैसी बात है, वो भी कहीं से आया है ना,
मर जाएगा तो वहां जाएगा, तेरे पास नहीं आएगा।
अरे वो अपने माँ के पास रहेगा क्या, और कहीं भटकेगा, अरे कौन सी गति में गया, कोई देव में गया होगा, कोई नरक में गया, कोई तीरियंच हुआ है, कोई मनुष्य हुआ है, तो ये क्योंकि अपने बच्चे के प्रति प्यार, और ये लोग सब जानते हैं, ये हमारे से ज्यादा बड़े साइकियाट्रिस्ट होते हैं, हाँ वो गुरु।
टाइम
5 मिनट, हाँ। तो कहते ये जो उनके कारण जो नया धारण किए ना, फिर वो जैसा बताएंगे वैसा करेंगे, ये ऐसी ऐसी पूजा रचो, ये इसको ये नाग की पूजा करो, ये व्यंतर की पूजा करो, ये सब ऐसा ढकोसला चलता है, इसको कहेंगे गृहित मिथ्यात, नया धारण किया है। वहां ये इतना भी नहीं विचार करता है कि ये सामने वाला आदमी सच बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है, क्या ये मुनि का स्वरूप है कि नहीं है। अरे गृहस्थों से भी जिसका पापाचरण चल रहा हो उसके पीछे ये आचार्य है, भगवान है, ये मुनि है मानकर उसके पीछे लगते, यानी लौकिक में तो हम कितने चौकन्ना रहते हैं, है ना, बिना बुद्धि के तो इतने ऊपर के स्टेटस पर नहीं आए हम, कोई बिजनेस करता है, कोई डॉक्टर इंजीनियर है, परंतु जहां ये गुरु है चलो उसके पीछे लगे पा, यानी वहां कोई परीक्षा नहीं करता। आपको हीरा खरीदना है तो जिसने जो थमा दिया 5 लाख रुपए देकर ले आते हो, क्या करते हैं, अपने को नहीं मालूम तो कोई जो पहचान वाला है या कोई जानकार है उसकी सलाह से लेंगे कि नहीं लेंगे। सोना भी खरीदने गए तो हम जहां कोई स्टैंडर्ड है दुकान वहां जाके खरीद करेंगे, और ये धर्म के बारे में
सब चलेगा।
वहां विचार नहीं करता जी कि क्या ये सही स्वरूप है कि नहीं है। देव के नाम लेकर वहां माथा टेकता है, परंतु क्या ये देव का स्वरूप है कि नहीं, ये सारा इसमें आएगा 7 तत्व में। मोक्ष तत्व का स्वरूप जानेंगे तो देव का स्वरूप समझ में आएगा, संवर तत्व और निर्जरा तत्व का स्वरूप जानेंगे तो मुनियों का स्वरूप समझ में आएगा, परंतु ये सोचना नहीं चाहता है। धर्म के नाम पर इतनी भोंदूगिरी कहो या इतने चक्कर चलते हैं तो वहां जीव बिना कुछ सोचे बिल्कुल जो चाहे या जो बताए कोई तो वैसा ही आचरण करता है। तो इसको कहेंगे गृहित मिथ्यात्व। अरे अभी तो गृहित मिथ्यात्व कैसे जाए उसकी चर्चा करने के बदले पहले में पहले गृहित मिथ्यात्व हटाने की बात करनी पड़ती। क्यों? वो जाए बिना अगृहित मिथ्यात्व जा ही नहीं सकता। यानी गृहित मिथ्यात्व को तो साबूत रखेंगे और अगृहित मिथ्यात्व टालने के लिए प्रयत्न करेंगे तो जाने वाला है नहीं। इसलिए सबसे पहली कंडीशन बताते ना कि जो सच्चे देव सच्चे गुरु और सच्चे शास्त्र की पहचान करना पहले में पहले। वो तो पहले बात भी हुई थी ना अपनी यहाँ पर। सच्चे देव गुरु सच्चे देव का यानी सर्वज्ञ का स्वरूप देखा था यहाँ पर। अब मुनियों का स्वरूप वो भी गुणस्थानों में होने वाला ही है और सच्चा शास्त्र वही है जो जिनेन्द्र भगवान ने बताया हुआ है। तो उसका जैसा बताया है वैसा श्रद्धान करना है। आप कहेंगे वो जो कोई भी कहेगा भगवान के नाम पर यह ऐसा है तो हमको ऐसा ही श्रद्धान करना? तो नहीं। सात तत्वों का जो स्वरूप है वो पहले सुनना और फिर वैसा है कि नहीं यह हमें निर्णय करना। वी हैव टू कम टू दैट कंक्लूजन। जैसे हम गणित सीखते हैं फिर स्कूल में तो गणित बताते हैं और फिर आपको और चार ऐसे प्रॉब्लम्स देते हैं कि ये सॉल्व करके लाओ घर। तो हमने सॉल्व कर दिए उसके उत्तर पीछे लिखते हैं ना गणित के पुस्तक में। तो पीछे देखे हमने तो अपना उत्तर आया और है वहां कुछ और लिखा है। तो क्या करते हैं पूर्वी? फिर से करते। हमारी कहां भूल है हम देख लेते। फिर भी यदि नहीं वो उत्तर होता है तो हम कहेंगे हमारे कोई दूसरे क्लासमेट है तो उनको पूछेंगे मेरा उत्तर ऐसे तेरा कैसा आया? नहीं हुआ तो क्या करेंगे? फिर टीचर को पूछेंगे। कब तक? जब तक अपना उत्तर वैसा नहीं होता तब तक। यहां भी ऐसा ही करना है। सात तत्वों का स्वरूप पहले हम सुनेंगे उसका डिटेल समझेंगे फिर अपने को क्या लगता था तो वो सही है कि नहीं तो हम बार बार विचार करेंगे। जब तक जैसा बताया है वैसा हमारा कंक्लूजन नहीं होता तब तक विचार करेंगे और कुछ नहीं करना है। तत्वों का विचार ही एकमेव कारण है कि जिसके द्वारा हम सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर सकते हैं। और इतना वो विचारों में ही हो जाता है इतना वो आसान है। हम कुछ न कुछ अन्य क्रिया करना चाहते हैं क्योंकि हमें सही उपाय भी मालूम नहीं है ना। तो ये उपाय क्या है उसकी हम यहाँ चर्चा करेंगे। ये सात तत्व कौन कौन से हैं उसके नाम सीखेंगे उनके लक्षण क्या है वो सीखेंगे और उसके बारे में और विस्तार से चर्चा भी करेंगे। अब यहीं रुकते हैं अपना विषय समय हो गया। बोलो चौबीसो भगवान की जय।